नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंदिर हो प्रकरण 44 पृष्ठ संख्या 244। यह घटना अगले दिन होने वाले उत्सव के लिए अच्छा विज्ञापन बन गई। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ और उनके शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद रथ यात्रा जलूस में मेलबोर्न के मुख्य सड़कों से होकर निकले। जहां तक समाचार माध्यमों द्वारा रिपोर्ट का प्रश्न है, प्रभुपाद कह चुके थे कि हरे कृष्ण पवित्र नाम छपने मात्र से पाठकों का बहुत भला होता है, चाहे नाम का उल्लेख आदर के साथ हो अथवा अनादर के साथ। अमोघ प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ से टाउन हॉल के निकट सिटी स्क्वायर में मिले। रथ पर एक व्यास आसन था, किंतु उन्होंने रथों के आगे आगे भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के सामने चलना पसंद किया। प्रभुपाद एक सुनहरे रंग की ऊनी टोपी, बादामी रंग की बंद गले की जर्सी, चमकदार केसरिया रंग की रेशमी धोती और कुर्ता पहने थे। कंधे पर चारों ओर वे रेशमी चादर लपेटे थे और गले में आर्किड और उनके पीले फूलों की माला पड़ी थी। मेलबोर्न में जाड़े की ऋतु थी, बहुत ठंड थी, लेकिन वे अपना हाथ ऊपर उठाए कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे। हमारे पास करीब 11 मृदंग थे, 3 व्यक्ति बड़े बड़े ढोलक भी बजा रहे थे और हम लोगों ने श्री प्रभुपाद के चारों ओर घेरा बना रखा था। सभी ढोलक बजा रहे थे, हरे कृष्ण गा रहे थे, स्वयं प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे और जलूस नगर में आगे बढ़ता जा रहा था। ये सब भाव विभोर कर देने वाला था। स्वैनसन स्ट्रीट में बढ़ते हुए प्रभुपाद अपनी दिव्य शक्ति से मानो नगर को विजित करते जा रहे थे। सभापति लिखते हैं, मौसम की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन नहीं था। प्रभुपाद रथ यात्रा में स्वैनसन स्ट्रीट और पर्क स्ट्रीट के कोने पर सम्मिलित हुए। उसके आगे उन्होंने उसका नेतृत्व किया। वे लगभग 2 मील पैदल चले। सभी भक्त 3 विभिन्न समूहों में बैठकर कीर्तन कर रहे थे, किंतु जब प्रभुपाद रथ यात्रा में सम्मिलित हुए तो हम सभी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे जलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे चैतन्य महाप्रभु की 14 फुट ऊंची मूर्ति थी और उसके पीछे 3 रथ थे। जलूस में चलते हुए बीच बीच में प्रभुपाद रुक जाते थे और मुड़कर चैतन्य महाप्रभु को देखने लगते थे। वे केवल रुक जाते थे और 1-2 मिनट तक चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते थे, फिर मुड़कर जलूस का नेतृत्व करते हुए आगे चलने लगते थे। यह एक ऐसा भाव विभोर कर देने वाला अनुभव था कि लगता था कि प्रभुपाद ने मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया पर विजय पाली है। और गोपाल लिखते हैं, मैं पूरी शोभा यात्रा में ढोल बजाता हुआ प्रभुपाद के बगल में चलता रहा। पूरा समय उन्होंने एक विशेष लय में गाना बहुत पसंद था। वे अपने हाथ हवा में ऊपर कर लेते थे और नाचने लगते थे। वैकुंठनाथ लिख रहे हैं, रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी, प्रभुपाद चल रहे थे और एक स्थान पर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए थोड़ा चल लाओ। मैं घबराहट में सन्न हो गया क्योंकि वहां कोई स्थान नहीं था जहां पानी मिल सकेगा। आजकल तो बॉटल साथ चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर इसी इतना टफ कंडीशन में प्रभुपाद ने जो है प्रचार किया है। तो कृष्ण पर अपने आप को निर्भर करके मैं अत्यंत तेजी से दौड़ता हुआ एक मकान पर पहुंचा और वहां रह रहे कुछ लोगों से कुछ पानी मांगा। उन्होंने जल दे दिया। मैं उसे लेकर प्रभुपाद के पास पहुंचा। जब मैं जल ले जा रहा था तो आकाश में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई दिया था। थोड़ी वर्षा भी शुरू हो गई थी। वह बहुत ही स्पष्ट इंद्रधनुष था और उसका छोर उस विशाल भवन के ऊपर तक पहुँच रहा था जहाँ हमारी रथ यात्रा समाप्त हुई। हरीशौरी लिखते हैं, एग्जीबिशन बिल्डिंग्स के नाम से एक विशाल भवन था। हमने उसका एक भाग किराए पर ले लिया था जिसकी छत लगभग 80 फुट ऊंची थी, इसलिए रथों के ऊपर का सिरा नीचा करके उन्हें अंदर ले जाया गया और हाल के अंदर सिरों को फिर ऊंचा कर दिया गया। तीनों रथों को अंदर ले जाकर उनके सिरों को उठा दिया गया। उसके बाद प्रभुपाद अंदर आए और हर एक व्यक्ति बैठ गया। सब मिलाकर वहाँ पर लगभग 1000 व्यक्ति थे। श्री प्रभुपाद रथ में ही व्यास आसन पर बैठे, उन्होंने वहीं से प्रवचन किया। सभापति लिखते हैं, यदि भी ये बहुत ठंडा और खराब दिन था, फिर भी उस एग्जीबिशन बिल्डिंग में 1000 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रभुपाद का भाषण संक्षिप्त था, उन्होंने सबको धन्यवाद किया, वे आए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि वे सब लोगों की प्रशंसा करते हैं कि लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने और रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि वास्तव में गाने और नाचने का सारा कार्यकलाप श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण है। मेलबोर्न के समाचार पत्रों ने रथ यात्रा का समुचित विवरण छापा, करतालों और कीर्तनों का एक दिन। हेडिंग क्या था न्यूज़ आइटम का? ये करतालों और कीर्तनों का एक दिन, स्वामी के जुलूस में रथों की प्रधानता। एक समाचार पत्र लिखा, कृष्ण से चौंकिए नहीं पादरी। क्रिश्चियंस के लिए मैसेज दिया जा रहा है, बाद में पादरी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कृष्ण से चौंकिए नहीं। रेवरेंड गॉर्डन बाविल ने कल स्कॉट चर्च में कहा कि हरे कृष्ण युवकों को मेलबोर्न की सड़कों में देखकर ऑस्ट्रेलिया वासियों को खतरा नहीं अनुभव करना चाहिए, ना उनका उपहास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण संप्रदाय आधुनिक युवकों के आध्यात्मिक मूल्यों और परंपरागत सद्गुणों की ओर लौटने का एक लक्षण हो सकता है। मुरली कृष्ण प्रभु जी बैठे हैं, यूथ देखते हैं, आज की यूथ की क्या स्थिति है, उनको आध्यात्मिक मूल्य चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, पर टेक्निकली होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? समाज के अंदर जो है स्थिति ये चल रही है कि यूथ जो है बड़ा भ्रमित है, खासतौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। और जितने भी हम आज के देखें बच्चे कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल कहाँ पढ़ते हैं? चॉइस क्या है पेरेंट्स की? जब मैट्रिमोनियल के लिए प्रेजेंटेशन आती है तो उसमें खास लिखा जाता है एजुकेटेड इन कॉन्वेंट स्कूल, ये एक प्लस पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है कि जिससे आकर्षित होकर लोग विवाह के लिए राजी हो जाएं। और कॉन्वेंट स्कूल के अंदर क्या एजुकेशन दिया जाता? कॉन्वेंट जो वर्ड आया है अंग्रेजों से, उसके अंदर एजुकेशन किसका था? मेनली एजुकेशन जो है क्रिश्चियनिटी का, बाइबल का। प्रेयर्स भी उनकी बाइबल पे बेस्ड थी, क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड थी। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है, बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हरे कृष्ण संप्रदाय आधुनिक युवकों के आध्यात्मिक मूल्यों और परंपरागत सद्गुणों की ओर लौटने का एक लक्षण हो सकता है। आगे लिखते हैं, लेख में भक्तों की अतिशय भौतिकतावादी के विरुद्ध प्रतिक्रिया की प्रशंसा की गई और रथ यात्रा जलूस की घटनाओं का विवरण दिया गया। मेलबोर्न में एंग्लिकन चर्च के प्रधान बिशप रेवरेंड पावल ने श्री प्रभुपाद से भेंट की थी। इसी का परिणाम था कि बिशप ने अपने रविवार के उपदेश में कहा कि हरे कृष्ण कोई खतरे की चीज नहीं है। श्री प्रभुपाद ने बिशप की टिप्पणी को बहुत महत्वपूर्ण माना। मेलबोर्न में अपने एक सप्ताह के पड़ाव में प्रभुपाद ने टाउन हॉल में एक विशाल उत्सव में भाग लिया, जहां उनकी प्रेरणा से भाव विभोर करने वाला लंबा कीर्तन चलता रहा, जिसमें भगवान चैतन्य के श्री विग्रह के सामने 1000 लोग घेरा बनाकर गाते और नाचते रहे। वे सेंट पास्कल्स टीचिंग कॉलेज भी गए, जो फ्रांसिस्कनों का गुरुकुल था। वहां के भिक्षुओं ने उनका भली भांति स्वागत किया और गुरुकुल के प्रश्नार्थियों ने बुद्धिमत्ता पूर्ण दार्शनिक प्रश्न किए और एक ने पूछा कि प्रभुपाद उनके संप्रदाय के संस्थापक असीसी के सेंट फ्रांसिस के बारे में क्या विचार रखते हैं। उस प्रश्नार्थी ने संक्षेप में बताया, जिस प्रकार सेंट फ्रांसिस हर वस्तु बनाता ईश्वर से जोड़ते हैं और प्रकृति के सभी जीवधारियों को बंधु वृक्ष, बंधु पक्षी आदि नामों से संबोधित करते हैं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि सेंट फ्रांसिस का दृष्टिकोण सर्वोत्तम प्रकार से भगवत भावना सिक्त है। उसी शाम को प्रभुपाद की भेंट रेवरेंड के जे ए केली से हुई, जो ऑस्ट्रेलिया में रोमन कैथोलिक चर्च के विकार जनरल प्रति धर्माध्यक्ष थे। प्रभुपाद ने उस प्रातःकाल सेंट पास्कल में दिए गए भाषण का रिकॉर्ड उन्हें सुनाया। बाद में रेवरेंड ने प्रभुपाद से पूछा कि आप उनके साथ अपनी फोटो खिंचवाएंगे जो उनकी धार्मिक पत्रता में प्रकाशित किया जाएगा। समाचार पत्रों ने फिर खबर छापी स्वामी द्वारा एकता के संदेश का प्रसार। कल रोमन कैथोलिक यारा थियोलॉजिकल यूनियन का मठ, जो अन्यथा आमतौर से बहुत शांत रहता है, हरे कृष्ण कीर्तन से गूंज उठा। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं। जब तक आप भगवान को प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, हम भौतिकतावादी के रोग से छुटकारा पाना चाहते हैं, अन्यथा अभाव हमेशा बना रहेगा। विचार विनिमय के पश्चात संस्था की छात्र परिषद की अध्यक्ष पैट्रिक मैकलूर 25 ने कहा कि बहुत सी बातों में हमारे बीच सहमति है, विशेष रूप से हम इस अपेक्षा में एकमत हैं कि हमें भौतिकतावादी का परित्याग करना चाहिए। श्रीमान मैकलूर ने आगे कहा, अनौपचारिक बातचीत से स्पष्ट हुआ है कि चर्च में खुलापन और सहिष्णुता है। अंत में वे बोले, हो सकता है कि उनके पास हमसे कहने को कुछ हो। इसमें एक बढ़िया बात कही गई है कि भौतिकतावादी का परित्याग करना चाहिए। जो इस्कॉन की तरफ से इको विलेजेस बन रहे हैं, किसी ने इको विलेजेस में गया है कोई? समबड़ी कौन साउथ में इको विलेजेस बने हैं, कोयम्बटूर में बना है इको विलेज, कहां पर है महाराष्ट्र में, क्या क्या क्वालिटी है वहां की? और क्या क्वालिटी है? प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि हमें वही प्रयोग करना चाहिए जिसको हम पैदा कर सकें। जो इको विलेजेस बन रहे हैं उनमें जो अल्टीमेट जो उसमें आना वाला है उसमें नो इलेक्ट्रिसिटी, आप तेल के दिए से कार्य करेंगे, खासतौर पे एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जिसे कहते हैं, साउथ में बड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नो प्लास्टिक्स, नो टेलीफोन एंड मोबाइल्स, नो कुकिंग गैस। जगन्नाथ जी का जो किचन है वो कितने लोगों ने देखा है, थोड़ा पास से जाके झांक के उसके अंदर से क्या क्वालिटी है उसकी? लकड़ी से खाना बनता है। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में बनता है। तीसरा, बताइए। चौथा, आप किचन देखेंगे, मैंने तो विलेज में जाके किचन देखा है, द्वारा एक बिलगाम में इनका बहुत बड़ा फार्म हाउस बनना 450 एकड़ का, तो एक सेंट्रल चूल्हा है लकड़ी से जलता है और साइड में कोई लकड़ी नहीं है, तीन चूल्हे इधर है, तीन चूल्हे इधर है, तंदूर की तरह कंडे हैं, उनमें हाई एयर जाती है और वो लकड़ी जो बीच वाली अग्नि देती है वो चारों तरफ फैल जाती है और हर जगह पर पकता है। पर जगन्नाथ जी किचन में खासियत है कि बर्तन के ऊपर बर्तन के ऊपर बर्तन के ऊपर बर्तन रखा होता है, अग्नि नीचे है और सबसे पहले ऊपर के बर्तन में खाना बनता है। ये इसी को प्रभुपाद ने प्रोपेगेट किया है कि हमारा जो इको विलेज है, जो इको विलेज कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पुरानी मान्यताएं हैं उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। बिजली नहीं होगी, प्लास्टिक्स नहीं होंगे, मोबाइल्स नहीं होंगे, व्हीकल्स नहीं होंगे, व्हीकल्स मीन्स बैलगाड़ी होगी, पर ये जो आजकल के मॉडर्न व्हीकल्स हैं ये नहीं होंगे और मैंने इनका प्रत्यक्ष दर्शन भी किया है। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा आ रही है कि भौतिकतावादी के रोग से छुटकारा पाना जो दिल्ली जैसे शहर में संभव है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है। July 1 मेलबोर्न में प्रभुपाद ने गुरुदास को वृंदावन में पत्र लिखवाया, अब कृष्ण बलराम मंदिर के निर्धारित उद्घाटन को 6 सप्ताह से भी कम रह गए हैं और शील प्रभुपाद को वृंदावन से नियमित समाचार नहीं मिल रहे थे। उनकी चिंता यह थी कि एक शानदार समारोह के लिए हर चीज समय पर तैयार हो जाए। अब पत्र क्या है, पत्र सुनिएगा। प्रिय गुरुदास, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मैं ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 दिन बिता रहा हूँ, इसके बाद मुझे संयुक्त राज्य जाना है। इसी बीच वृंदावन में जन्माष्टमी को होने वाले संस्थापन समारोह के विषय में मैं तुम्हें कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। मुख्य बात यह है कि समारोह का संचालन स्वयं हमारे लोग करेंगे। हम उन लोगों की सहायता के लिए निर्भर नहीं होंगे जो हमें अपने से हीन समझकर हमारे साथ भोजन करना भी पसंद नहीं करेंगे। पेरिस, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया आदि संसार के सभी स्थानों में हमारे लोग पुरुष और स्त्री अष्ट विग्रहों की उपासना भली भांति कर रहे हैं और मुझे उनकी उपासना पर गर्व है। कोई कारण नहीं है कि वृंदावन में समारोह का संचालन करने के लिए हम सोचें कि हम किसी भारतीय गोस्वामी पर निर्भर हैं। इसे अच्छी तरह से समझ लो और इस विषय में आश्वस्त हो जाओ। उन्हें निमंत्रित करो और अतिथि बनकर आने दो, किंतु अपने समारोह का संचालन हम स्वयं करेंगे। तुम हर गोविंद नाटक मंडली और अपने अभिनेताओं को भी बुलाने की व्यवस्था रखो। प्रसाद की मात्रा दिन भर आने वालों के लिए प्रभूत होनी चाहिए। रसोई घर को चलते रहना चाहिए, इसलिए देख लो कि आटा चावल और घी काफी मात्रा में उपलब्ध रहे। आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया जाए और उनका अच्छी तरह ध्यान रखा जाए। हम अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। अगर वे आते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आते तो हम अपना प्रबंध स्वयं कर लेंगे। हमारी ओर से हर चीज अच्छी तरह से होनी चाहिए। मथुरा और वृंदावन के सभी बड़े अधिकारियों को आमंत्रित करना चाहिए, वो स्वामियों और गुरु भाइयों को भी। स्थानीय मारवाड़ियों और पार्थक को भी आमंत्रित करना। वास्तव में एक सामान्य निमंत्रण पत्र वितरित करके हम प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे। सभी वृंदावन वासियों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे आए और अर्च विग्रह का दर्शन करें और प्रसाद लें। आजीवन सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे श्रीमान बिरला और अन्य सम्माननीय व्यक्ति। धन का कोई प्रश्न नहीं है, प्रथम श्रेणी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृष्ण सभी खर्चों की व्यवस्था करेंगे, इसलिए सब कुछ शानदार ढंग से करो। शानदार से मतलब यह है कि प्रसाद का भंडार भरा पूरा रहे और मंदिर को खूब सजाया जाए। आंतरिक सजावट और श्रृंगार का काम यमुना, मदिरा और जयतीर्थ कर सकते हैं, वे इसके विशेषज्ञ हैं। शास्त्रीय निर्देश प्रद्युमन से प्राप्त कर सकते हो। कर्णपुर के श्रीमान जयपुर भी मुझसे मिलने आए थे, इसलिए उन्हें भी आमंत्रित करना चाहिए। सभी स्थानीय आश्रमों और सन्यासियों को भी आमंत्रित करना। प्रणव के बारे में कोई समाचार नहीं है, मैंने एक तार भेजा था किंतु कोई उत्तर नहीं आया। पूरा प्रबंध मिलजुल कर करना चाहिए, आपस में लड़ाई मत करना, मेरी यही चिंता है। मैं वृंदावन के लिए 25 जुलाई तक प्रस्थान करूंगा, इस बीच मुझे लॉस एंजलिस के पते पर उत्तर भेजना। तुम्हारा सतत शुभेच्छु, एसी भक्ति वेदांत स्वामी। समारोह के संबंध में गुरुदास को प्रभुपाद से सीधे निर्देश प्राप्त हुआ। अन्य भक्तों को जिन्हें उन्होंने पत्र लिखा, कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। पश्चिम अफ्रीका में च्यवन महाराज को संबोधित एक पत्र में उन्होंने लिखा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण विचार विनिमय करना है, इसलिए अच्छा होगा कि हम जुलाई के अंत में वृंदावन भारत में मिलें। आज मैं शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा में सम्मिलित होने संयुक्त राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, किंतु जुलाई के अंत में मैं वृंदावन पहुँच जाऊँगा। जन्माष्टमी के दिन हम वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, जब अष्ट विग्रहों की स्थापना करके हम अपने कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अतएव आप भी अवश्य आए और समारोह के संचालन में सहायता करें। इसलिए हमारी भेंट जुलाई के अंत में वृंदावन में होगी। मेलबोर्न में लाट्रो विश्वविद्यालय में श्री प्रभुपाद का कार्यक्रम पेरिस में ला सैले प्लेयल के उग्रवादियों के साथ हुई खेदजनक घटना की एक प्रकार से पुनरावृत्ति साबित हुआ। यहाँ भी श्रोता मंडली में निःशुल्क प्रवेश पाने वाले छात्रों की बड़ी संख्या थी और यहाँ भी प्रभुपाद के शिष्यों ने उनके लिए एक मानक व्यास आसन सजा रखा था। भक्तों ने मंच पर कीर्तन किया और प्रभुपाद का परिचय दिया। तब प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान इस मूल बात को बताते हुए आरंभ किया कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है और यह शिक्षा सभी के लिए आवश्यक क्यों है। ये तो 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि श्रोता मंडली में युवक खड़ा हो गया और प्रभुपाद को अपशब्द कहने लगा। अंत में उसने जोड़ दिया कि आपका अपने रोल्स रॉयस के बारे में क्या कहना है। श्रोता मंडली जो अभी तक शांत बैठी थी, इस प्रतिरोध के बाद में चैन है, उठी और शोरगुल मनाने लगी। प्रभुपाद श्री प्रभुपाद के तीन शिष्य जो अति आक्रमणशील थे, पहली पंक्ति छोड़कर श्रोता मंडली के पीछे वहां पहुंच गए जहां वह युवक चिल्ला रहा था। इस बीच श्री प्रभुपाद ने बोलना बंद कर दिया और सहिष्णु बनकर प्रतीक्षा करने लगे। शोरगुल बंद हो गया, दोनों ने फिर आरंभ किया। जैसा कि मैं समझा रहा था, इस भौतिक जीवन में हम एक शरीर से दूसरा शरीर पाते हैं। जीवन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता, किंतु मरने को हर एक विवश है। 5 मिनट के बाद अब शब्दों की वर्षा पुनः होने लगी। इस बार प्रभुपाद के तीनों शिष्यों ने शोर करने वालों को ढकेल कर पिछले दरवाजे से बाहर कर दिया। लड़ाई के मध्य एक छात्र ने अपने बूट में से एक चाकू निकाल लिया, किंतु एक भक्त ने उसे निहत्ता कर दिया। ये सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट रही है। आज हम लोग प्रवचन प्रवचन करने जाते हैं, कोई चाकू निकालता है क्या? पिस्टल, नाइफ कभी निकला देखा है? पंडाल हो रहा हो, किसी के यहाँ मंदिर में प्रोग्राम हो रहा हो, घर में प्रोग्राम हो रहा हो, लेक्चर चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, पता लगा कि लोगों ने चाकू निकाल लिया। आज हमारे पास फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में प्रचार हो रहा है। देखिए प्रभुपाद किस हालात में, किस स्थिति में, फिर विदेश में, अपने देश में नहीं, विदेश में प्रचार कर रहे हैं। सभागृह में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, बहुत से लोग जोर जोर से बातें करने लगे थे, कुछ जाने के लिए खड़े हो गए। मधुदीप स्वामी ने माइक्रोफोन में बोलते हुए छात्रों से अनुरोध किया कि वे शांत हो जाएं और श्री प्रभुपाद को बोलने दें। श्रोता मंडली में कुछ छात्र हिंसा पर उतारू लगते थे, भक्तों को प्रभुपाद की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी, किंतु प्रभुपाद बोलने को जारी रखना चाहते थे। उन्होंने प्रश्न आमंत्रित किए। छात्र, मैं एक ईसाई हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ईसा मसीह के विषय में आपकी क्या राय है। श्रील प्रभुपाद, हम भी आपकी तरह ईसा मसीह का आदर करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। हम भी ईश्वर के बारे में ही बात करते हैं, इसलिए हम उनका आदर अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते हैं। प्रश्न, तो क्या आप ईसा मसीह के पुत्र हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ मैं ईसा मसीह का सेवक हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ईसा मसीह हूँ। प्रश्न, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप में ईसा मसीह की शक्ति है? एक से एक धुरंधर प्रश्न आ रहे हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, मुझ में ईसा मसीह की कोई शक्ति नहीं। प्रश्न, तो मैं ईसा मसीह की शक्ति रखता हूं क्योंकि मैं ईसाई हूं, मेरे में तो है। श्री प्रभुपाद, ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्नियन हैं। क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्नियन। व्यवहार में ये एक ही बात है, हंसी और कर्तव्य ध्वनि, खूब तालियां बजी। छात्र, मेरा एक प्रश्न और है। मेरा विश्वास है कि जीसस वापस आने वाले हैं, कृष्ण नहीं आएंगे। जीसस को देखने पर तुम लोग क्या करोगे? और छात्र हंस पड़ा। श्री प्रभुपाद, जब वे आएंगे तब हम उनका स्वागत करेंगे। ये बहुत अच्छा समाचार है कि जीसस आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आने तो दो। छात्र, जीसस की कोई ख्याति नहीं थी, वे सैंडल पहनते थे और दो चोरों ने मिलकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और आप रोल्स रॉयस की सवारी करके अपनी आध्यात्मिकता दिखाते हो, तो कंट्रास्ट बता रहा है। इसके बाद बड़ा ही गहरा एलिगेशन है, आप रॉयल्स रॉयस की सवारी करके अपनी आध्यात्मिकता दिखाते हो, आप गद्दी पर बैठते हो, धन में डूबे हो, तुम कृष्ण वाले केवल धन चाहते हो, यू वॉन्ट ओनली मनी। श्री भगवान ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, छात्र कहने लगा और तुम कहते हो हिंसा हिंसा है और तुम उसमें विश्वास करते हो। जेसस तो अपना दूसरा काल भी आगे कर देते थे और अपने अनुयायियों से भी यही आशा करते थे, फिर तालियां बजी। श्री भगवान, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई भावना पूर्ण धार्मिक पद्धति नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। प्रभुपाद ने समझाया कि ईश्वर के विज्ञान को समझना ईसाइयत और हिंदुत्व दोनों से परे है, मुख्य लक्ष्य ईश्वर को प्रेम करना सीखना है। पर्पस एम क्या है? टू लव कृष्णा, टू लव गॉड। दूसरा छात्र, मैं कृष्ण मूर्ति के विषय में पूछना चाहता हूं। कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि जब आप पश्चिमी संसार में बोल रहे हूं तब आपको चाहिए कि अपने आप को एक पाश्चात्य की तरह प्रस्तुत करें, एक भारतीय की तरह, या इस तरह नहीं जैसे आप भारत में बोलते हो। कृष्ण मूर्ति का कहना है एक उच्च आसन पर बैठने और भिक्षु का वेश बनाने के स्थान पर आपको पाश्चात्य वेशभूषा में होना चाहिए और कुर्सी पर बैठना चाहिए, आपकी इस विषय में क्या राय है? मतलब लड़का क्वेश्चन कर रहा है कि आपको भगवत गीता पे भागवतम में अगर प्रवचन करना है तो पेंट कोट पहन के आना चाहिए, वैष्णव ड्रेस में नहीं, पेंट कोट में आओ और कुर्सी पे बैठो और उसके बाद जो है आप संदेश दो। श्री प्रभुपाद का उत्तर सुनिए, वास्तव में भगवत चेतना वाला कोई व्यक्ति ना पाश्चात्य होता है ना प्राच्य, अतः भक्त जहां भी जाता है वहां लोग उसका जिस तरह भी स्वागत करते हैं वह उसे स्वीकार करता है। इन भक्तों ने मेरे लिए यहां ऊंचा आसन बना दिया है तो मैंने उस आसन को स्वीकार किया है, यदि वे मुझे फर्श पर बैठाना चाहते तो मैं उसे भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता, मुझे ना उसमें को आपत्ति है ना इसमें, किंतु भक्त आदर देते हैं और आदर पाते हैं ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि हमें परम ईश्वर का और उसके प्रतिनिधि का आदर करना चाहिए। आजकल बात भिन्न हो गई है, छात्र आदर करना नहीं सीख रहे हैं, वास्तव में ये पद्धति नहीं है। वैदिक पद्धति के अनुसार ईश्वर के प्रतिनिधि का आदर ईश्वर की तरह ही होना चाहिए। एक अन्य छात्र ऊंचे स्वर में पूछ रहा है, क्या आप अपने आंदोलन को आज के संयुक्त राज्य से उद्भूत ज्ञानोदय का विस्तृत रूप मानते हैं? आपका आंदोलन व्हाइट हाउस के मनोवैज्ञानिक युद्ध विभाग में विशेष रूप से क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इस वर्ष 4 जुलाई को संयुक्त राज्य के विरुद्ध हमारे प्रदर्शन में भाग लेने आ रहे हैं और वास्तविक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने को तैयार हैं? अनेक छात्र फिर शोर मचाने लगे। मधुदेव स्वामी ने माइक्रोफोन लिया कि यदि आप चाहें तो मैं आपको उत्तर दूंगा, हमारा आंदोलन संयुक्त राज्य से नहीं निकला है। अगर आपको कोई भ्रांति हो तो हर वस्तु संयुक्त राज्य से निकलती है तो वह आपका पूर्वाग्रह है, मेरा नहीं। और फिर तालियां बजी। दूसरी बात यह है कि हमारे गुरु महाराज अपना आंदोलन आरंभ करने के लिए संयुक्त राज्य इसलिए आए कि यहाँ के समुद्री जहाज पर उन्हें मुफ्त टिकट मिल गया। यदि आपने उन्हें मुफ्त टिकट भेजा होता तो शायद वह पहले आपके ऑस्ट्रेलिया ही आए होते। वे भगवत प्रेम का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते, वे एक क्रांतिकारी भगवत चेतना की चिंगारी जलाना चाहते हैं। और मेरा विचार है कि आपकी भी रुचि क्रांति में है, हम भी क्रांति चाहते हैं, किंतु हम ऐसी क्रांति चाहते हैं जिससे लोगों को अपने में शांति पाने में सहायता मिले, चाहे वे साम्यवादी हों, मार्क्सवादी हों, या आप जो कुछ चाहते हों। हमारा प्रयत्न लोगों को इसमें इस बात में सहायता करना है कि वे अपनी शांति पाएं, चाहे वे आगे नहीं बोला। मधुदेव स्वामी की टिप्पणियों से पहले से भी अधिक शोर होना आरंभ हो गया। पूरे हाल में छात्रों के हल्ला मचाने के साथ हलचल बढ़ती गई। शांतिपूर्ण दार्शनिक विचार विमर्श की कोई संभावना नहीं रह गई थी। भक्तों की सबसे बड़ी चिंता श्री प्रभुपाद को सुरक्षित रूप में हाल से बाहर ले जाने की हो गई। प्रभुपाद अपने व्यास आसन से उठे, शिष्यों के मार्ग रक्षण में बगल के दरवाजे से बाहर चले गए। जब वे बाहर निकले तो छात्रों की भीड़ दरवाजे के बाहर इकट्ठी हो गई थी, लेकिन बिना किसी घटना के वे अपनी प्रतीक्षा करती कार में बैठ गए। जब वे छात्रों की भीड़ में से धीरे धीरे कार में जा रहे थे तो एक छात्रा ने अपने पैर के बूट से कार को ठोकर लगाई, और जब भक्त अपनी गाड़ियों में सवार हो रहे थे तो छात्रों ने उस पर पत्थर फेंके। अंत में जब भक्त परिसर से बाहर निकल रहे थे तब उन्हें एक ऊंचे मार्ग से होकर गुजरना पड़ा। वहां प्रतीक्षा कर रहे कुछ छात्रों ने उनकी गाड़ियों पर काला पेंट फेंका। ऐसा हुआ कभी यहां? इतना टफ, इतने कठिन हालात में प्रभुपाद ने प्रचार किया है, ऐसे हालात यहां हुए कभी? देखा है, सोचा है, ऐसा भी हो सकता है? अपनी कार में बैठे हुए प्रभुपाद अधिकतर शांत बने रहे, किंतु वे विरक्त लग रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में वे भाषण केवल कक्षाओं में करेंगे जहां के लिए भी आमंत्रित होंगे, अब वे खुले में भाषण नहीं देंगे। श्री प्रभुपाद मेलबोर्न से हवाई जहाज द्वारा रात में हवाई रुकते हुए शिकागो पहुंचे। कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने शिकागो में केवल 2 दिन रुकना था, जहां उन्हें नगर की रथ यात्रा के प्रथम उत्सव में भाग लेना था। संसार भर में बड़े नगरों में रथ यात्रा निकालने में प्रभुपाद की गहरी रुचि थी। बड़ी बड़ी भीड़ों में लोग प्रायः कृष्ण चेतना के दर्शन को नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वे बेचैन हो जाते थे, क्रोधित होते थे, हिंसा पर भी उतर आते थे। किंतु रथ यात्रा उत्सव से हर एक का मनोरंजन होता था और सभी लाभान्वित हो सकते थे। श्री प्रभुपाद ने भविष्य पुराण से उद्धरण देते हुए द नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था कि जो व्यक्ति रथ यात्रा के साथ उसके आगे या पीछे चलता है, चाहे वे नीच परिवार में ही उत्पन्न हुआ हो, उसे विष्णु के समान वैभव की प्राप्ति अवश्यमेव होगी। भारत में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ उपासना का मूल स्थान है। कोई पश्चिम निवासी भगवान जगन्नाथ का दर्शन तभी जपा सकता है जब वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में उसका शरीर विग्रह रथ पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। इसके अलावा बहुत कम पश्चिम निवासी लोग वास्तव में जगन्नाथपुरी जाते थे, किंतु श्री प्रभुपाद और उनका कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान जगन्नाथ को उनके नगर की मुख्य सड़कों से रथ यात्रा निकालकर सबको उपलब्ध करा रहे थे। एक सामान्य अमेरिकन या ऑस्ट्रेलिया निवासी को यह विचित्र लग सकता है, किंतु भगवान जगन्नाथ और उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित था। भगवान जगन्नाथ जो सारे विश्व के स्वामी हैं, सबके लिए हैं, किसी की राष्ट्रीयता या धर्म भले ही कुछ भी हो। मेरे को याद है कि मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल गया था आज से 13 साल पहले, और उसका एक वीडियो भी मेरे पास आया रिसेंटली। वहाँ पे एक छोटा सा रथ है, टेबल, इस टेबल को समझ लिए थोड़ा ऊंचा कर लिया जाए, और जगन्नाथ जी विराजमान है, प्रभुपाद विराजमान है, पंचतत्व विराजमान है। उस रथ को डेली मॉर्निंग में हर मरीज के बेड में ले जाया जाता, एवरी पेशेंट। और उस जगन्नाथ जी के रथ पर बहुत सारे फूल चढ़े होते हैं, बहुत सारे, तो एक एक फूल जो है हर पेशेंट को दिया जाता एज ए प्रसाद, एज ए ब्लेसिंग। और ये ट्रेडिशन अभी तक बरकरार है, लेटेस्ट में वीडियो आया वहाँ का, अभी तक बरकरार है। तो जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको भगवान की ब्लेसिंग रहे, ठीक से स्वस्थ होकर वापस चले जाएं। उसमें जो है जगन्नाथ जी के रथ को ले जाना, वहाँ पे सबको फूल ऑफर करने, इससे बड़ी उपलब्धि है ये हमारे दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में या और बहुत हिंदुस्तान में और भी कहीं भी ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। और जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो बनाया है इस्कॉन वालों ने, उसमें ये ट्रेडिशन है और बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। 1974 का ये उत्सव सैन फ्रांसिस्को का 8वां रथ यात्रा उत्सव होगा और अब प्रभुपाद के आग्रह पर भक्तगण अधिकाधिक नगरों में ऐसे उत्सव मनाना आरंभ कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद इस तरह के प्रचार को सर्वाधिक महत्व देना चाहते थे, इसलिए अपने कार्यक्रम को बदलकर वे शिकागो आए थे, जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे थे। उनका उद्देश्य केवल एक घंटे के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ पर बैठकर स्ट्रीट स्ट्रीट में चलना था। प्रभुपाद का विचार था कि उनके शिष्य प्रत्येक महाद्वीप के नगरों में रथ यात्रा निकालकर झूठे धर्म को पराजित कर देंगे और साथ ही गाने, नाचने, भोज में सम्मिलित होने और भगवान का दर्शन पाने से लोग कृष्ण की ओर आकृष्ट होंगे। पुराने शिकागो नगर में श्रील प्रभुपाद एक भली भांति अलंकृत बड़े रथ के सामने खड़े थे। वे रथ पर चढ़कर उस मंच पर बैठने को उत्सुक थे जहां वे जुलूस में नगर का परिभ्रमण करेंगे, किंतु चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, इसलिए वे प्रतीक्षा में खड़े रहे जब तक एक भक्त दौड़कर एक हार्डवेयर स्टोर जाकर एक सीढ़ी न ले आए। तब वे रथ पर चढ़े और अपने व्यास आसन पर बैठ गए। नगर हजारों ग्राहकों और श्रमिकों से भरा था। शिकागो में रहने वाले विशाल भारतीय समुदाय के अनेक सदस्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी सुपरिचित परंपरा को निभाने के लिए बाहर निकल आए थे और सारे मध्य पश्चिमी क्षेत्र से प्रभुपाद के सैकड़ों शिष्य रथ की रस्सियां खींचने, कीर्तन करने और प्रसाद तथा बैक टू गॉडहेड पत्रिका बांटने के लिए इकट्ठे हो गए थे, जबकि महान रथ अमेरिका की एक सबसे व्यस्त सड़क पर होता हुआ आगे बढ़ रहा था। मोटरसाइकिलों पर सवार कई पुलिसकर्मी जुलूस के आगे आगे चल रहे थे, किंतु उनकी मुद्रा उड़ीसा के राजा की तरह बिल्कुल नहीं थी जो भारत में परंपरा से रथ यात्रा के आगे आगे चला करता था। राजा प्रतिवर्ष सेवक की भांति अपने आप को प्रस्तुत करता और जुलूस के आगे आगे सोने की मूठ वाली झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के सामने रथ को हारता चलता। शिकागो पुलिस का इरादा यही लगता था कि जुलूस जितना जल्दी हो सके पूरा हो जाए। बड़ी रुखाई और कड़ाई के साथ मैं केवल ये देख रही थी कि मोटर गाड़ियों का सामान्य यातायात चलता रहे। पुलिस वाले मानते थे कि जुलूस निकालने के लिए भक्तों के पास सरकारी अनुमति थी, लेकिन वे उन्हें लगातार उकसाते रहे कि रथ को तेजी से खींचें, अन्यथा वे जुलूस को समाप्त कर देंगे। किंतु कृष्ण कृपा से सबको, इसमें शिकागो पुलिस के लोग भी शामिल थे, संतोष हुआ जब कई मीलों से शांतिपूर्ण चलता हुआ जुलूस अंत में सिविक सेंटर प्लाजा पहुंच गया। गगनचुंबी इमारतों और शहरी शोरगुल के बीच प्रभुपाद ने खुले में श्रोताओं को संबोधित किया। व्याख्यान के तुरंत बाद भक्तों ने कीर्तन और प्रसाद वितरण आरंभ कर दिया। उत्सव से प्रभुपाद अत्यंत प्रसन्न थे। आज इतना ही, आगे वाला टॉपिक काफी लंबा है। तो श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंद।